તારીખ 26/9/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 376 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 308
પ્રશ્ન 376 ચાલતા હૈ જ્ઞાન કી પરિણતિ મેં क्या मात्र नायक भाव का अस्तित्व ग्रहण करना है, ऐसा प्रश्न किया है। उत्तर दिया है कि हाँ, नायक का अस्तित्व ग्रहण करना है। नायक मैंने अपना ज्ञान स्वरूपी जानने वाला अपना आत्मा, आत्मा की मौजूदगी, आत्मा में, सिर्फ आत्मा में ग्रहण करना, मात्र आत्मा में ग्रहण करना, और देह शरीर और रागादि में अपनत्व किया है, अपनत्व का अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव को छोड़ देना। शरीर में, राग में अस्तित्व ग्रहण, मैंने अपनत्व का अनुभव करने से आकुलता और दुख उत्पन्न होता है। ज्ञान स्वरूप से ही निराकुल है, सुख रूप है। जैसे हर मनुष्य के अपना अपना रूप होता है, वैसे ज्ञान का भी एक रूप है, और वो सुख है, वो आनंद है, वो ज्ञान का रूप है। ज्ञान सुख रूप है, ज्ञान आनंद रूप है, और वहीं हमारा अस्तित्व है, वहीं हमारी मौजूदगी है। हमने भूल से, भ्रांति से, जहाँ हमारा अस्तित्व नहीं है वहाँ अस्तित्व ग्रहण कर लिया है। अस्तित्व नहीं होने पर वो अलग हो जाते हैं, शरीर भी अलग हो जाते हैं, दूसरे पदार्थ भी अलग हो जाते हैं, हमको अलग हो जाना पड़ता है नहीं चाहते हुए भी, तो इसलिए हमें दुख होता है। मृत्यु के काल में दुख होने का यही कारण है कि जो संयोग अनित्य है उसमें हमारी नित्यता की कल्पना है। हम वहां नित्य रहना चाहते हैं, हम हर में साथ में रहना चाहते हैं, शरीर के साथ रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हमारे घर में रहना चाहते हैं, हमारे समाज में रहना चाहते हैं, हमारे गांव में रहना चाहते हैं, हमारे देश में रहना चाहते हैं, लेकिन हम रह नहीं पाते। आयु पूर्ण होते हमको और जगह जाना होता है, तो हमारी जो पकड़ है हमारे भाव में, हमारे परिणाम में, उसके कारण आकुलता बन जाती है, बहुत आकुलता होती है। बहुत से मनुष्य बेशुद्ध अवस्था में आयु को पूर्ण करते हैं। यहाँ विषय लिया है बेंसरी ने श्रद्धान का, कि आत्मा के जो दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन प्रधान गुण हैं। दर्शन को यहाँ दृष्टि शब्द किया है, श्रद्धान बोलते हैं। उसका मुख्य कार्य है अस्तित्व को ग्रहण करना। ज्ञान भी अस्तित्व को तो ग्रहण करता है, चारित्र भी ग्रहण करता है, लेकिन श्रद्धान तो एक ही काम करता है। ज्ञान अस्तित्व को भी ग्रहण करता है, जानता भी है, अनुभव भी करता है। चारित्र अस्तित्व को भी ग्रहण करता है और सुख को भी उत्पन्न करता है, आनंद को भी उत्पन्न करता है, जबकि श्रद्धान एकला अस्तित्व ग्रहण करने का ही काम करती है, इसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो पैराग्राफ में आखिर की दो पंक्ति है, आगे का विषय चल गया है कि दृष्टि के विषय में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब वो है कि श्रद्धान आत्मा में कैसे कैसे गुण हैं वो नहीं देखता, अपना अस्तित्व ग्रहण करना वही दृष्टि का विषय है। श्रद्धान तो सिर्फ मौजूदगी को ग्रहण कर लेता है कि है, उल्टा दृष्टांत से और समझ में बात आ जाएगी कि जैसे हमारे पास कुछ संपत्ति है तो हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास है कि वो है, उसका अस्तित्व का विश्वास है हमें, है ना? हम जेब में लेकर के नहीं घूमते, कुछ बैंक में है, कुछ माल में है, कुछ मकान में है, कुछ उगाई में है, कुछ जेवर में है, हाँ अलग अलग जगह संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन हमको अंदाज मालूम है कि उतनी संपत्ति हमारी है, तो उसका अस्तित्व है, हमारी श्रद्धा सिर्फ उसके अस्तित्व को ही ग्रहण करती है। हमारा ज्ञान सब जानता है कि कहाँ कितना पड़ा है, किधर किधर कितना है, वो ज्ञान का विषय है, जानने का विषय है, लेकिन श्रद्धान में तो है उतना ही हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि श्रद्धान का कार्य अस्तित्व ग्रहण करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। वो उल्टी श्रद्धा है जो दुख का कारण बनती है, क्योंकि वो चीज छूट जाती है, हम उससे अलग हो जाते हैं। ऐसे हमारी जो गुण संपत्ति है, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, आनंद वगैरह वगैरह, वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारी गुण संपत्ति है जो हमेशा हमेशा साथ रहती है। उसको भेद प्रभेद को ज्ञान देखता है, श्रद्धा नहीं देखती। दृष्टि का विषय भेद नहीं है, सिर्फ अभेद रूप से अस्तित्व को ग्रहण करना। जैसे इधर इधर उतनी संपत्ति ऐसा नहीं है, अभेद रूप से संपत्ति को ग्रहण कर लेना वो श्रद्धा का विषय है, भेद रूप से संपत्ति को ग्रहण करना वो ज्ञान का विषय है, और उसमें सुख का अनुभव करना वो चारित्र का विषय है। ऐसे आत्मा के विज्ञान में ये तीन प्रधान गुण, तीन प्रधान शक्तियां जब उल्टी कार्य करती है, उल्टा परिणमन करती है, तो संसार और संसार के दुख को उत्पन्न करती है, और सुरती काम करती है तो सुख और मोक्ष को प्राप्त कराती है। बस यही सुख दुख के विषय में पूरा साइंस है, अधूरा साइंस नहीं है, ये पूरा साइंस है। गुण भेद या स्वपर प्रकाशक का भेद दृष्टि के विषय में नहीं आता, दृष्टि का विषय भेद को, दृष्टि भेद को ग्रहण नहीं करती, वो विषय ही नहीं करती। इसलिए कितने गुण आत्मा में हैं और आत्मा स्वपर प्रकाशक है, स्वयं को प्रकाश करने वाला, दूसरे को प्रकाश करने वाला है, ऐसा भेद दृष्टि के विषय में नहीं आता, दृष्टि अभेद रूप से ग्रहण करती है। जैसे दृष्टांत लिया है कि दीपक या दर्पण कोई बाहर नहीं जाते, दिया का प्रकाश है, दिया अपने में रह करके प्रकाश को फैलाता है, वैसे आत्मा अपने स्वरूप में रह करके, अपने क्षेत्र में रह करके जानता है, ये सब दूसरी दूसरी चीजें वो ज्ञान का प्रकाश है। दर्पण में भी कोई चीज भीतर में नहीं आती, दर्पण की एक अवस्था होती है जिसमें आकृति बनती है, वैसे आत्मा ज्ञान दर्पण है, दूसरी चीज का प्रतिबिंब उसमें आता है, दूसरी चीज उसमें नहीं आती। जैसे मिठाई की मिठास मिठाई में रहती है, ज्ञान में उसका जानना होता है, लेकिन मीठा रस ज्ञान में भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता। न कोई ज्ञान में अवकाश भी है, किसी दूसरे चीज की प्रवेश करने की कोई गुंजाइश, कोई जगह ज्ञान में है ही नहीं। दीपक या दर्पण कोई बाहर नहीं जाते, दर्पण भीतर रहे और दीपक बाहर जाए ऐसा नहीं है। दर्पण के भीतर में कोई चीज आ जाए और दिया बाहर निकल करके प्रकाश करे ऐसा नहीं बनता। दीपक का प्रकाश बाहर जाए इसलिए दीपक बाहर गया ऐसा लगता है, परंतु बाहर नहीं जाता है। ऐसे वो दृष्टांत अनुसार सिद्धांत में अपने को ज्ञेय का आधार नहीं है। मुख्य बात अध्यात्म में क्या है कि आत्मा किसका आधार लेता है? शरीर का आधार लेता है, संपत्ति का आधार लेता है, परिवार का आधार लेता है, वो दुखी होता है, आधार ले नहीं सकता। श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा अनादि से जी रही है और अनंत काल तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। क्योंकि जीने की शक्ति है तुम्हारे में, जीने की अनंत शक्ति है। इसलिए अगर कोई प्राणी को मार दिया जाता है तो उसका देह का घात होता है, आत्मा नहीं मरता, आत्मा को घाव नहीं लगता और आत्मा को कुछ होता नहीं, वो अन्य जगह उसका क्षेत्रांतर हो जाता है, स्थानांतर हो जाता है, मरता नहीं कभी। इसलिए अपने को ज्ञेय का आधार नहीं, ज्ञेय मैंने जानने में आने वाला शरीर दूसरे संयोग, उसका आधार अपने को नहीं है। तो बाहर कहाँ ले जाना है? तो फिर हमको बाहर जाने का कोई, बाहर ले जाने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। बाहर जाते ही नहीं आत्मा, अपने अपने ही रहता है हमेशा हमेशा। स्वयं ज्ञाता को दूसरा कौन ज्ञान कराए? ज्ञान कराया नहीं जाता, ज्ञान भीतर में से होता है। ज्ञान ज्ञान की शक्ति में से डेवलप होकर के बाहर आता है। जैसे ये जो छोटी पीपर होती है, दवाई होती है ना, उसको घोंटते हैं खरल में, 64 पोर तक घोंटते हैं तो 64 पूरी पीपर हो जाती है। तो उसकी जो चरपराई है, उसकी जो गर्मी है, वो बाहर आ जाती है, जो शक्ति में पड़ी थी वो व्यक्त हो जाती है और दवाई के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी को सर्दी लगती है तो उसको छोटी पीपर देते हैं दवाई में। ये गर्मी कहाँ से आई? खरल में से आई क्या? पत्थर में से आई क्या? भीतर में थी वही बार आई। वैसे आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति है, वो बाहर आती है। अब देखिए, एक प्रोविजन स्टोर में 10-10 हजार आइटम होती है। व्यापारी को कभी ज्ञान में गिरदी नहीं होती कि इतनी ज़्यादा चीज़ है, मैं कैसे इसका व्यापार करूंगा, इसके भाव कैसे मालूम रहेगा हमको, बताइए क्या नहीं हो। कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा कितना भी जानता है, अधिक जी कितना भी अधिक जानता है, उसको कोई इसकी तकलीफ नहीं होती ज्ञान में, कि ज्यादा जानने से कोई तकलीफ होती। उनका वो ज्यादा जानने का प्रयास करता है हमेशा हमेशा, बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है, दुनिया भर की चीजों का जानने का प्रयास करता है, और इसलिए पर्यटन भी करता है, देश विदेश में जाता है, क्यों, जानने के लिए। ज्ञान में कभी ऐसा नहीं होता कि ज्यादा जान लेंगे तो फिर ज्ञान में जगह रहेगी कि नहीं, जितना जानता है ज्ञान खुलता जाता है, जितना जानता है ज्ञान खुलता जाता है, क्योंकि वो शक्ति है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बहुत कम जानता है, जितना वो बड़ा होता है उसका ज्ञान खिलता जाता है, अंदर से आता है। हम समझते हैं कि बच्चे को हम सिखाते हैं, वास्तव में वो खुद सीखता है, इसका ज्ञान खुद डेवलप होता है। तुमको खाना चाहिए ऐसा कभी हमने सिखाया क्या? कि तुम खाओ तुम पियो, इच्छा होती है उनको, उनको दर्द होता है, वो रोने लगता है, सिखाया जाता है कि तुम रोना सीखो, तुम खाना सीखो। ज्ञान की शक्ति भगवान कहते हैं जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव, कि एक एक आत्मा में बेहद ज्ञान की शक्ति भरी है। बाह्य पदार्थ की सुख बुद्धि की आसक्ति के कारण से वो ज्ञान और आनंद सिकुड़ जाता है, और अपने आप में एकाग्र होने से, ध्यान लगाने से वो खुलता जाता है। हमारे मुनिराज सर्वज्ञ होते हैं, कैसे होते हैं, स्वरूप में ध्यान लगा करके वो अपनी ज्ञान शक्ति को उजागर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं अपने स्वरूप में, और ज्ञान खुल जाता है उसका। जितना वो बाह्य पदार्थ के प्रति आकर्षित होता है, जितना वो परिणाम को खींचता है, ज्ञान को बाहर में खींचता है, उतना ज्ञान सिकुड़ने का कारण बनता है। जितना भीतर में कॉन्सेंट्रेट एकाग्र होता है, उतना वो खुलने का कारण बनता है। वही ज्ञान गुण का साइंस है, ये साइंटिफिक बात है, और प्रयोग से वो सिद्ध होता है, प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान को कहीं बाहर ले जाना नहीं है, स्वयं ज्ञाता है, जानने वाला है, दूसरा कौन ज्ञान कराए, और भीतर प्रतिबिंब कहाँ से आ गिरे, कोई प्रतिबिंब आकर के गिरता नहीं है, कोई चीज अंदर में आ नहीं सकती, स्वयं ज्ञाता है। प्रतिबिंब ज्ञेय के और की अपेक्षा से कहा जाता है, दूसरे पदार्थ के बिंब की अपेक्षा से प्रतिबिंब बोला जाता है। जैसे दर्पण में हमको हमारे चेहरे को देखते हैं, तो दर्पण में हम तो प्रवेश नहीं किया, एक प्रतिबिंब आया, अब हमारे चेहरे पे कोई दाग है, तो हम दर्पण को साफ करेंगे या चेहरे को साफ करेंगे, क्या कर रहे हैं, दिखता है उधर, पहुंचना कहाँ है, नेपकिन लेकर दाग को साफ करना इधर या उधर, ऐसे मलिनता हमारे परिणाम में होती है, राग द्वेष मोह पाप के परिणाम, मलिन परिणाम हमारे यहाँ होते हैं, दूसरे पदार्थ उसमें निमित्त होते हैं, दूसरे पदार्थ को अवलंबन करके, निमित्त बना करके हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। हम उन पदार्थों का त्याग करते हैं, परिणाम को साफ नहीं करते, क्या गलती हुई कि उसका त्याग करो। तो हमारे परिणाम सुधर जाएंगे क्या कि नहीं सुधरेंगे? इसलिए जैन विज्ञान में पहले परिणाम सुधार का प्रोसेस है, परिणाम सुधारने से बाद में त्याग कर दो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले त्याग करो, परिणाम सुधर जाएंगे वैसा बनने वाला नहीं, ये उल्टा प्रोसेस है। इसलिए पहले गृहस्थ में रह करके निरस हो जाओ, शरीर के प्रति निरस हो, परिवार के प्रति निरस हो, संपत्ति के प्रति निरस हो, फिर छोड़ना आसान है, वरना परिणाम खींचेंगे। परिणाम में तो लगाव रहे, और हम त्यागी होकर के जंगल में जाएंगे तो कहाँ उसका वहां स्मरण आएगा, क्या करोगे? परिवार में इतने लोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, मेरे इतने हैं, मेरे उतने हैं, आएगा आएगा। अपनत्व तो छोड़ा नहीं परिणाम में से, और बाहर में त्याग कर दिया, तो त्याग काम में नहीं आता। फिर भी जो नहीं समझते वो ऐसा कर लेते हैं, पहले त्याग करते हैं। ज्ञानी है वो पहले त्याग नहीं कराते, पहले परिणाम को ठीक कराते हैं, फिर त्याग का अवसर आ जाता है, त्याग हो जाता है। त्याग किया नहीं जाता, त्याग अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमको रस नहीं है, हम दूसरी चीज को क्यों ग्रहण करें, ऐसे हो जाता है, इस प्रकार से होता है।
त्याग करते करते ज्ञान नष्ट हो जाएगी,
ऐसा कभी नहीं बनता, ऐसा कभी नहीं बनता, क्योंकि हमारे अभिप्राय में वो सुख का कारण रहा, परिणाम तो वहां खींचेंगे। पहले अभिप्राय को ठीक करो। परिणाम में अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमारी फिलोसॉफी में, हमारे तत्वज्ञान में सबसे पहले अभिप्राय को ठीक कराया है। अभिप्राय उल्टा है उसको सुलटा करो, सीधा करो, फिर योग्यता ठीक हो जाएगी, आपको रस आएगा नहीं, फिर कोई चीज को छोड़ देना आसान है, क्योंकि हमको रस नहीं है, क्यों ग्रहण करें, परिणाम चलता ही नहीं है। इस तरह से त्याग का, बाह्य त्याग का प्रोसेस इस तरह से है, यथार्थ रूप में। स्वयं ज्ञाता है, प्रतिबिंब ने के और की अपेक्षा से कहा जाता है कि इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है, ने बीच में कहने में आ जाता है, कहने में आ जाता है, परंतु ने का अवलंबन उसे मैंने आत्मा को लेना पड़े ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम उसका आधार लें। कोई चीज ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई तो जरूरी नहीं है कि हम उसका आधार लें, कोई जरूरी नहीं है,
हैं?
नहीं, बंधे हुए नहीं है कि हमको उसका अवलंबन लेना पड़े। हमारे स्वरूप में कोई कमी नहीं है, आखिर में चाहिए तो सुख शांति ने, दूसरा का आधार, संपत्ति का, परिवार का, शरीर का आधार लेने में तो चाहिए तो सुख शांति ने। अब वो बिछड़ जाते हैं तो वही निमित्त दुख के कारण बन जाते हैं, पर सुख शांति भीतर में शक्ति रूप में है, उसको उजागर करे तो बिना किसी पदार्थ हमको सुख शांति आनंद भोगने में मिलता है, जैसे हमारे जिनेंद्र परमात्मा भोग रहे हैं, उसको कौन सी जरूरत है। सिद्धालय में तो शरीर भी नहीं है, जो सिद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध परमात्माएं, सर्वोत्कृष्ट दशा वो है मोक्ष की। वहां शरीर भी नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, वहां भोग उपभोग परिवार मकान कुछ नहीं है, फिर भी परमानंद में विराजते हैं। कैसे हैं? परमानंद में विराजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर भी उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई पूजा करे नहीं करे उनको कोई लेना देना है नहीं। संसार में कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और बहुत से लोग इसकी पूजा नहीं करते, जानते भी नहीं और पूजा भी नहीं करते, उनको किसी से लेना देना नहीं है, जानते हैं सब बात को। केवल ज्ञान में सारे विश्व को जानते हैं, फिर भी उनको कुछ लेना देना नहीं है। वितरागता है, वितरागी परमात्मा है, अपने परमानंद में विराजते हैं, आनंद भीतर में से आता है। श्रीमद जी ने एक बहुत अच्छा पत्र लिखा है, हम रात्रि के स्वाध्याय में थोड़ा उसका संदर्भ रेफरेंस लेंगे, 108 नंबर का पत्र है। लिखा है कि हे जीव, संबोधन किया है, हे जीव तुम भ्रांति में मत रहना, तेरा सुख तेरे भीतर में है, बाहर में कहीं भी तेरा सुख नहीं है। तुम सच कह रहे हैं। अब कोई कहता है कि नहीं, हमारा हमको तो बाहर में भी सुख लगता है। हाँ? जैसे कोई कहता है कि हमको गन्ना बहुत मीठा लगता है, चबाते हैं। हमारे एक भाई थे, उनको गन्ना बहुत प्रिय थे, तो वो क्या करते थे, उसकी छिलका निकाल करके, उसके टुकड़ा कर करके, उस पर गुलाब जल को छंटकाव करके, उसको फ्रीज में ठंडा करके, फिर वो उसको चबाते थे। तो एक दिन वो चबा रहे थे, बोले कि शशि भाई हमको ये बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हैं कि सुख उसमें नहीं है, लेकिन हमको तो सुख लगता है, देखो हम कैसे चबाते हैं उसको। फिर हम बोले कि फिर चबाते ही रहिए, जब आपको इसमें सुख है तो इस सुख को बढ़ाओ ना, बढ़ाते जाओ, छोड़े ही मत उसको, चबाते ही रहो। लेकिन आप थक जाओगे, फिर भी कोई खिलाएगा तो आप गर्म हो जाओगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं खाएंगे, अरे नहीं हम तो डालेंगे आपके मुंह में, कि नहीं मुंह खोलेंगे ही नहीं, क्या हो गया आपको, आपका सुख कहाँ चला गया है? आपने उतना खाया उसमें सुख हुआ, तो उतना खाने में डबल होना चाहिए, उतना खाने में और होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, इसके बजाय गायब हो गया आपका सुख, क्या हो गया, कि वहां सुख था ही नहीं, एक कल्पना थी आपकी। ऐसे जितने भी सुख के विषय माने गए हैं संसार में, सब में वही हालत है, तो कल्पना छूट जाती है, और अगर सुख होता तो ऐसा नहीं बनता। इसलिए कोई सुख को मटेरियलाइज नहीं कर सके, सुख के साधन अनुकूलता पंचेंद्रिय के विषय को सब जुटाते हैं, फिर भी सुखी नहीं होते हैं, और वही भोग रोग का कारण बनता है, भोगे रोग भयम। भृतुहरि ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, वैरागी थे तो उसमें भोगे रोग भयम करके श्लोक लिखा है। शरीर में रोग आने का विज्ञान क्या है? सर्वज्ञ के ज्ञान में पूरा आयुर्वेद आया है, ये जो वर्तमान मेडिकल साइंस है वो अधूरा है, अधूरा इसलिए रिसर्च चल रही है उसकी। अगर पूरा होता तो रिसर्च बंद हो जाती, लेकिन रिसर्च चालू है सबों के। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में वो बात आई है कि जितने भी जीव के भोग उपभोग के परिणाम हैं वही नए रोग के कारण हैं। उसी वक्त असाता वेदनिका कर्म बंद होता है और उसका जब उदय आता है तो रोग चालू हो जाता है। जैसे एक आदमी शाम को तो तंदुरुस्त अवस्था में सोता है रात को, और उठता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे गले में कैंसर की गांठ हो गई। क्यों हुई? और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो खान पीन में बिल्कुल बहुत नियमित होते हैं, भोग में रस लिया है तो उसका फल में वेदना पीड़ा, शरीर की पीड़ा भोगनी पड़ेगी। अगर हमको ये मालूम हो जाए कि हम खाते खाते जो रस लेते हैं वही हमारी भविष्य की पीड़ा का कारण है तो हमको कितना रस आएगा बताइए? कोई भी भोग उपभोग ऐसे पाप कर्म के बंध होते हैं जिसमें हमको प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। मगर सही ज्ञान होता है तो निरसता होना, उदासीनता होना, वैराग्य होना सहज है। ज्ञान वैराग्य को ले आता है, पर उदासीनता में सुख शांति है। दूसरे पदार्थ को के पीछे दौड़ने में आकुलता है और उसको उससे उदासीन होने में निराकुलता है। अपेक्षा में आकुलता है, उपेक्षा में निराकुलता है। ये अपेक्षा उपेक्षा सामने सामने है, प्रतिपक्ष में है। तो यहां कहते हैं कि दूसरा पदार्थ जो ज्ञान में जानने योग्य है उसको ज्ञेय कहते हैं। उसका आलंबन लेना पड़े आत्मा को वो जरूरी नहीं है। उसका आलंबन लेने से अपेक्षा होती है, वही आकुलता है, वही दुख है। आप स्वयं ज्ञानाकार है और ज्ञेयाकार रूप परिणाम परिणाम में ऐसा स्वरूप है ज्ञानाकार और ज्ञेय का आकार प्रतिबिंब आ जाए ऐसा स्वरूप है। ओके, है ज्ञानाकार। ज्ञानाकार मैंने ज्ञान स्वरूपी है आत्मा, ज्ञेय उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, बाकी कोई ज्ञेय से लेना देना है ही नहीं। मिट्टी का घड़ा दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, घड़ा फूट जाने से दर्पण फूटता नहीं, फूटता है क्या? ऐसे सामने वाली चीज में कुछ भी होता है, इससे ज्ञान में कुछ होना नहीं चाहिए, जबकि भ्रांति से हमको होता है कि जो ज्ञान में चीज जानने में आती उसमें फिर पर होता है तो हमको कुछ होने लगता है। क्यों? कि हमने आधार ले लिया है तो उसमें आना जाना होता है तो हमको लगता है कि हमारा गया हमको आया, हमारा गया हमको आया। वास्तव में कुछ होता ही नहीं आत्मा में, कोई चीज आत्मा में आती नहीं, कोई चीज आत्मा में से गई नहीं। आत्मा के जो ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद सुख संपत्ति है वो हमेशा अपने साथ रहती है। बाहर की संपत्ति में बाहर में आना बाहर में जाना सब होता है, इससे आत्मा को कोई लेना देना है नहीं। मान लो कि हम करोड़पति अरबपति हैं, लोग कहते हैं आयुष पूरा होने से हम कोई साथ में लेके जाते हैं क्या है? चेक ड्राफ्ट हुंडी पे ऑर्डर कुछ साथ में आता है क्या? नहीं आता है। जितने भी हमने पाप कर्म किए उसको भोगने के लिए हम अधोगति में चले जाएंगे, पशुगति में चले जाएंगे। क्या बुद्धिमानी हुई उसमें बताइए? अगर हम हमारे दुख के कारण हम ही बनते हैं तो उसमें क्या फायदा हुआ? लेकिन लोक में तो इज्जत बड़ी है कि देखो भाई इसके पास वो है वो है वो है वो है, हैं? बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं। मान लिया कि हमको सुख है, उपाधि कितनी है वो अलग बात है। इन सब चीजों की कितनी उपाधि है वो हम कभी जांच तलाश किया नहीं, उसकी आकुलता कितनी होती है वो हम कभी देखते नहीं। और कल्पना करते हैं कि हमको सुख हुआ। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ते लड़ते प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? अब पूछिए प्राइम मिनिस्टर को कि आपके दिमाग में शांति कितनी है अशांति कितनी है, पूछ लीजिए। तो उसको शांति मिल ही नहीं सकती, इतने प्रॉब्लम सारे देश के, एक पूरा नहीं होता दस खड़ा होता है, ये हालत है। फिर भी कल्पना एक बनी कि इस जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर है ना, सत्ता का सुख, कल्पना है, आकुलता ज्यादा है। और आने वाले जीवन में आयुष पूरा होने के बाद क्या क्या दुख भोगना पड़ेगा उनसे लोग अनजान है, जबकि हमारे ग्रंथों में ये सब बात बताई कि ऐसा होने से ये होगा, ऐसा होने से इसका रिजल्ट वो है, इसका रिजल्ट वो है। सारे जो कर्म ग्रंथ हैं, करणानुयोग के जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें सब कायदा कानून लिखा है कि इस ऐसे ऐसे अपराध करने से इसका फल ऐसा है। जैसे हमारे पिनल कोड होते हैं ने, हैं? तो ऐसा अपराध करने से वो सजा दी जाती है, मिनिमम सजा वो है, मैक्सिमम सजा वो है। ये लौकिक कायदा कानून है। ये जैन सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र परमात्मा के कानून है, उसको भंग करने से उसका दंड जीव को अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है। तो फिर मालूम पड़ा तो छोड़ दिया ना, एम्बिशियस बहुत थे ना, तो फिर मालूम पड़ा कि इसमें तो गड़बड़ होने वाली है, तो फिर वो बदल दिया ना, हमने निश्चय बदल दिया, हमको चाहिए ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं इस दिशा में। तो जरूरत थी उतना कर लेते हैं इसलिए कि दूसरे से मांगना नहीं पड़े, दीनता में नहीं आना पड़े, सेल्फ स्टैंडिंग अपना काम कर सके। तो हमारा ये सुखी दुखी होने के विषय में हमको अच्छी तरह से उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि संसार में हम बहुत से लोगों को दुखी देखते हैं। वो दुखी क्यों है? कोई रोग से दुखी है, कोई निर्धनता से दुखी है, कोई अनेक प्रकार के प्रतिकूल संयोगों से दुखी है, क्यों? इनको ऐसा क्यों? बिना कारण कोई कार्य होता ही नहीं, होता ही क्या? अगर बिना कारण कोई कार्य होता है तो हम कोई कार्य के पीछे, कारण के पीछे क्यों लगते हैं? सबके पीछे अपना अपना कारण है। तो सुख दुख के विषय में कारण कार्य क्या है, इसका परिज्ञान करना, ये हमारे सुखी होने का कारण है और दुखी नहीं होने का कारण है। और ये हमारे ग्रंथों में यही बात भरी हुई है। सत्संग में इसकी चर्चा परिचर्चा होती है और हमको कई बातें समझ में मिलती है तो हम हमारे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये अपने आप को ठीक करने की बात है, दूसरे को ठीक करने की बात नहीं है, अपने आप को ठीक करने की बात है। और इसलिए भले ही हम सत्संग सामूहिक रूप में करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य वो है कि हमारे में जहां भी गड़बड़ी है वो हमको ठीक करनी है। तो हमारे दुख के कारण रूप हमारे भाव कैसे हैं, हमारे सुख के कारण रूप हमारे भाव कैसे हैं, वो बात को हमको समझना है और उसको हमें ठीक करना है। बस उसका विज्ञान हमको जानना है, उसका साइंस देखना है और अकॉर्डिंग टू साइंस हमें ठीक करना है। अंधश्रद्धा से चलना भी नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा को ग्रहण करना श्रद्धान में, यानी आत्मज्ञान करना, ग्रहण करना मैंने अनुभव करना, अनुभव ज्ञान करने के लिए श्रद्धान क्या काम करता है, ज्ञान काम कर क्या काम करता है, इसकी चर्चा की है बेंसरी ने। दोपहर को हमेशा आधा घंटा उनके पास चर्चाएं होती थी, जिसको भी शंका समाधान करना है उनको उत्तर देते थे। वो टैप की गई सब बातें, टैप रिकॉर्डिंग करके बाद में वो पुस्तक के रूप में उसको प्रसिद्ध किया है। हम भी पिछले 10 साल चर्चा में जाते थे, कभी कभी प्रश्न भी करते थे और ऐसी चर्चा का वो सब चर्चाएं इसमें आई है। एक विज्ञान होने से, साइंस होने से, वैज्ञानिक तौर से ये सब बातें चली है। और हमें सही परिस्थिति समझनी है और सही परिस्थिति समझते हैं उस भूल को हमको छोड़नी है। जानबूझ के करो कोई भूल नहीं करता, अनजाने में कुछ भी हो सकता है, जानबूझ के कोई भूल नहीं करता। क्यों? कि नुकसान किसी को करना नहीं है, नुकसान मैंने दुखी किसी को होना नहीं है, सब सुख के लिए तो प्रयत्न करते हैं। लेकिन सही सुखी होने का रास्ता क्या है वो मालूम नहीं होने से गलत रास्ते पे चलते हैं तो सुखी होने के बजाय दुखी होना पड़ता है और यही संसार में दुख का कारण है। संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है बताइए? क्योंकि भाई तो सब जीते हैं, मृत्यु का भय, प्रतिकूलता का भय, आकुलता का भय, लूट का, चोरी का, अपमान भय है, अनेक प्रकार का। आज तो इतनी परिस्थिति बिगड़ी है, मुंबई में कंपटीशन ऐसे होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गुंडाइज्म चल जाता है, खून खराबा कर देते हैं। मुझ में कोई प्रकरण चला था ना, बहुत चला था, सबको गुलशन कुमार को मार दिया क्या? वैसे बहुत हुआ है, बिल्डर्स में होते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो कोई होता है और बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका उसको मार दिया था। तो क्या है, तो उन लोगों को भय होता ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर होते तो उनके आस के पास अंगरक्षक रखते हैं, क्यों है? पिछले दिनों में इंदिरा जी के बगल बगल में 2000 आदमी इनके रेसिडेंस के आसपास में 2 माइल के एरिया में रखते थे, किसी को आने ही नहीं देवे। फिर भी उसके अंगरक्षक ने मार दिया, क्या करो, उसको फोड़ दिया। तनख्वाह कितना मिलता है आदमी? इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अंगरक्षक मिलने से उसके इतना हो सकती है, वो कोई जरूरी नहीं। तो संसार में भय का दुख तो सबसे बड़ा है, इससे तो सब गिरे हुए हैं पूरे संसारी। किसी भी प्रकार का दुख और भय नहीं रहे, इसके लिए कोई इलाज है? सबको मालूम नहीं है, लेकिन है तो सही। तो इसका ये सबसे बढ़िया से बढ़िया कोई विज्ञान है, कोई इलाज है, कोई साइंस है, तो इधर जैन ग्रंथों में है और जगह कहीं नहीं है। देखा अच्छा लगता है, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है। रात को नींद नहीं आती है तो गोलियां लेनी पड़ती हैं, ट्रैंक्विलाइजर से सोना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। आकुलता बढ़ जाती है, इसका कारण हुई है। और कैसे सुख शांति मिले, कैसे दुख मिटे, उसका कोई वैज्ञानिक इलाज, साइंटिफिक कोई सोर्स मिलता नहीं है संसार में। सारी मानव जात अनजान है, ये एक ट्रेजेडी है हमारे संसार की। कुछ एक लोगों, मुट्ठी भर लोगों के जानने में है, तो उसमें भी लाभ लेने वाले बहुत कम हैं। करीब करीब लोग अंधश्रद्धा से ऊपर ऊपर से चलते हैं, गहराई में जाते हैं वो तो सुखी हो ही जाते हैं और वो उसका निवेड़ा हो जाता है। तो हम सही विचार करके सही काम में लगे, ये उसका कहने का अभिप्राय है। पीछे समय हुआ है, आगे का स्वाध्याय कर लेंगे। हाँ, कहाँ से लिया है? ₹373 समस्त जैन शास्त्रों नो मंत्र अंतर्मुख थवानो छे। मंत्र एटले गुप्त भेद अथवा गुप्त रहस्य। उपदेशनो समस्त उपदेशनो केंद्र स्थान अंतर्मुख थवा अर्थे छे। એ અંતર્મુખ થવાના પ્રયોગને અહીંયા ચર્ચા છે. જે જીવ મુમુક્ષુતામાં પ્રવેશ કરીને મુમુક્ષુતાનો વિકાસ કરીને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય યોગ્યતાને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે અંતર્મુખ થવાનો પ્રયોગ કરવાની ક્ષમતાને પ્રાપ્ત કરે છે. એવી ભૂમિકામાં સૌથી પહેલા જ્ઞાનમાં જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞાન વેદન અર્થાત જ્ઞાનાનુભવ પૂર્વક સ્વરૂપ અસ્તિત્વને ગ્રહણ કરવું, એ પ્રયોગ છે. અને એ પ્રયોગથી એટલે કે એ સિવાયના બીજા કોઈ પ્રયોગથી નહીં, સમ્યક દર્શન આદિ અધ્યાત્મ દશાની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ કહેવાનો અહીંયા આશય છે. આત્મા સ્વપર પ્રકાશક છે, છતાં પણ પરને પરરૂપે ભિન્ન અને સ્વને સ્વરૂપે અભિન્ન જાણવું તે જ જ્ઞાનની યથાર્થતા છે. અને એવું ભેદ વિજ્ઞાન સ્વાનુભૂતિનું કારણ છે.